होशे अध्याय 12, होशे अध्याय 12 पद 1, एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है, वो लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। वे परमेश्वर के आने वाले विनाश से बचने के लिए अशूरों के साथ संधि करते थे और मिस्र को तेल देकर उनसे किराए के योद्धा मांगते थे, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। होशे अध्याय 12 पद 2, यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वो याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा, उसके कामों के अनुसार वो उसको बदला देगा। अब याकूब की बारी है। परमेश्वर कहता है, यही एसाव का पुत्र ऐतिहासिक याकूब है। होशे अध्याय 12 पद 3 और 4, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वो उसको मिला और वही उसने हमसे बातें की। आइए हम याकूब की कहानी को देखें। रिबका के पेट में जुड़वा बच्चे थे और वो बहुत ही कष्ट में थी। उसने कहा, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो राष्ट्र हैं, वे एक दूसरे से नितांत भिन्न हैं और परस्पर संघर्ष करते हैं। वे दोनों माता के गर्भ में ही लड़ रहे थे। जब उनका जन्म हुआ तब पैलौटे के शरीर पर बाल थे, अतः उसका नाम एसाव अर्थात रोमिल रखा गया। दूसरा बच्चा अब तक संघर्ष की मुद्रा में था। वो अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ, अतः उसका नाम याकूब रखा गया अर्थात एड़ी पकड़ने वाला। जब वे बड़े हो गए तब उनका पिता इसहाक पैलौटे को पैतृक आशीष देना चाहता था, अतः उसने एसाव से कहा कि वो शिकार मारकर उसका मनपसंद मांस पकाए, जिससे कि वो उसे खाकर उसको आशीष दे। इस पर याकूब ने अपने भाई का रूप धारण किया और अपना माता के द्वारा पकाया हुआ बकरे का मांस इसहाक को खिलाकर उससे पहलौटे की आशीष ले ली, क्योंकि उसका पिता इस आयु में देख नहीं पाता था। जब एसाव हिरण का मांस पकाकर अपने पिता के पास लाया तब इसहाक ने कहा, मैंने तो तुझे आशीष दे दी है। वो रोने लगा और बोला, ये निश्चय ही वो धूर्त याकूब होगा। अब यदि कुछ आशीष मेरे लिए बची हो तो मुझे दे। उनके पिता इसहाक ने कहा, मैंने तो सब आशीष उसे दे दी, अब मेरे पास आशीष है ही नहीं। एसाव ये सोचकर शांत हो गया कि पिता के मरते ही वो उसकी हत्या कर देगा। ये जानकर उनकी माता ने याकूब को उसके ननिहाल मेसोपोटामिया भेज दिया, जहां उसे अपने मामा की पुत्री से प्रेम हो गया और उसने उसे विवाह के लिए अपने मामा की 7 वर्ष सेवा का अनुबद्ध किया। अंततः उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी राहेल नहीं पर उसकी बहन है। वो क्रोध में लाबान के पास गया और उसे जवाब मांगा। उसने कहा कि प्रथा के अनुसार बड़ी बहन का विवाह पहले होता है, परंतु यदि वो और 7 वर्ष उसकी सेवा करेगा तो राहेल को भी पत्नी बना सकता है। उसने और 7 वर्ष उसकी सेवा करके राहेल को पाया। तब उसने उसके मवेशियों और भेड़ों के लिए अपने ससुर की सेवा की। अब याकूब ने देखा कि उसकी समृद्धि के कारण उसके ममेरे भाई और लाबान खुद उससे जलने लगा है, इसलिए उसने अपने देश लौट जाने का निर्णय लिया। लौटते समय राहेल ने अपनी पारिवारिक मूर्तियां छिपाकर रख ली। अब लाबान अपने पुत्र और अपने लोगों के साथ याकूब की हत्या करने का बहाना खोजकर उसका पीछा करने लगा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि वो याकूब पर हाथ न डाले, अन्यथा बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। जब उसकी भेंट याकूब से हुई, तब उसने उससे शिकायत की कि वो उसकी पुत्रियों एवं संपदा के साथ उसकी मूर्तियां भी ले आया है। याकूब के कहने पर उसने उसके शिविर में खोज की, परंतु राहेल ने उन्हें छिपा लिया, जिससे वो उन्हें खोज नहीं पाया। उसने याकूब से कहा कि यदि परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं होता तो तू अब तक मार डाला गया होता। लाबान ने एक रेखा खींच दी और याकूब से कहा कि ना तो तू इस रेखा को पार करके यहां आएगा और ना ही मैं इसे पार करके वहां आऊंगा। उस स्थान का नाम उन्होंने मिस्फा रखा, जिसका अर्थ कुछ लोग शुभ अलविदा बताते हैं, परंतु इसका अर्थ है जब तक हम एक दूसरे की अनुपस्थिति में हैं, परमेश्वर तेरी और मेरी रक्षा करे। आप कहेंगे ये बड़ी अच्छी विदाई का संदेश है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। इसका मतलब था तू दूर्थ मेरी पुत्रियों को ले जा रहा है, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मेरे विचार में तो तूने मुझे लूटा है, अतः हम अब साथ नहीं होंगे, परमेश्वर तेरी रक्षा करे। इस संकट से निकलते ही याकूब को संदेश मिला कि उसका भाई एसाव उसके पास आ रहा है। उसने सोचा मैं पीछे नहीं लौट सकता, क्योंकि वहां प्रवेश निषेध की रेखा है और आगे मेरा भाई 200 आदमियों के साथ आ रहा है। उसने मुझे जान से मार डालने का प्रण किया था। उसने दो टोलियां बना दी कि एक आक्रमण का सामना करे तो दूसरी भाग निकले। उसने अपने परिवार को नदी की दूसरी ओर सुरक्षित कर दिया कि संकट के समय वे बच निकले। वहीं पर स्वर्गदूत ने उसके साथ पूरी रात कुश्ती लड़ी थी। वो तो सोच रहा था कि लाबान से जैसे तैसे छुटकारा मिला, अब कल एसाव का सामना करना होगा, अतः कम से कम एक रात अच्छी नींद तो ले लूं। परंतु यहां स्वर्गदूत पौ फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। याकूब योद्धा भी था और साधन संपन्न व्यक्ति भी था। ऐसे लोग परमेश्वर को आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। वे हर परिस्थिति में अपनी चतुराई से बच निकला था। वो इस कुश्ती में भी स्वर्गदूत को नहीं छोड़ रहा था, अतः उसने उसके कुल्हे के जोड़ को उतार दिया, जिससे वो लंगड़ाने लगा। परंतु याकूब ने उसे नहीं छोड़ा और उससे कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रभु ने उसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, एड़ी पकड़ने वाला। प्रभु ने उससे कहा, तेरा नाम अब से आगे एड़ी पकड़ने वाला नहीं, परंतु यहोवा द्वारा नियंत्रित अर्थात इसराइल होगा। कहानी से तो ऐसा लगता है कि याकूब सतत प्रयास के कारण स्वर्ग दूत पर हावी हो गया था, परंतु होशे उसका उचित अर्थ बताता है जो उत्पत्ति में नहीं है। होशे अध्याय 12 पद 3 और 4। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उसे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वो उसको मिला और वही उसने हमसे बातें की। जब स्वर्ग दूत ने उसे लंगड़ा कर दिया, तब उसे एहसास हुआ कि वो असहाय है। वो रोने लगा। अतः हम ये न समझे कि वो स्वर्ग दूत पर हावी होकर कह रहा था कि उसे आशीष दिए बिना नहीं जा सकता। ये उसकी नम्र प्रार्थना थी, कृपया करके मुझे आशीष दे, आशीष दिए बिना मत जाना। वो एक पराजित व्यक्ति था, वो भीख मांग रहा था। परमेश्वर उसे इस स्थान पर लाना चाहता था कि वो उसके जीवन में आशीषों की वर्षा करने पाए। कितनी बार परमेश्वर को हमें भी ऐसी स्थिति में लाना होता है जब हमारी योजनाएं हमारी बुद्धि का अंत हो जाए और हम इतने परस्त हो जाएं कि हमारे पास अन्य कोई मार्ग न हो। याकूब के तुल्य किसी भी मनुष्य को जिसे वो चाहता है वो लंगड़ा कर देता है, लाचार कर देता है और आशा रहित कर देता है। तब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे आशीष दिए बिना छोड़कर नहीं जाना प्रभु। याकूब को परमेश्वर ने इस स्थिति में महिमामय आशीष दी, उसने उसका नाम बदल दिया। दूसरे शब्दों में उसके जीवन में परिवर्तन की आशीष। अब तू अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति के अधीन नहीं पर परमेश्वर के अधीन होगा। अगली सुबह वो नदी की दूसरी ओर गया, तब निश्चय ही उसकी पत्नियों ने कहा होगा, याकूब क्या हुआ, तू लंगड़ा कैसे हो गया? उसने अकड़कर कहा होगा, मेरा नाम याकूब नहीं इसराइल है, मेरा जीवन बदल गया है, अब मेरा नाम धोखेबाज नहीं परमेश्वर द्वारा नियंत्रित व्यक्ति इसराइल है। उसकी पराजय उसकी विजय बन गई। परमेश्वर हमें भी ऐसी परिस्थिति में लाता है जब हम हार कर निराश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे वश में नहीं है। ये आपके लिए महान आशीषों का जीवन होता है। ऐसी स्थिति में आप परमेश्वर पर पूरा निर्भर होना सीखते हैं, उसके द्वारा चलाया जाना सीखते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं तो सब कुछ करके हार गया, अब तू ही मेरा एकमात्र सहारा है, जैसे तू चाहे वैसे लेकर चल। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी जीवनी और विशेष करके इस घटना की व्याख्या होशे अधिक स्पष्ट करता है कि यहां आकर याकूब का अहंकार टूट गया और उसने प्रभु से गिड़गिड़ाहट कर आशीष मांगी। परमेश्वर ने उसकी पराजय को जय में बदल दिया। जब वो एसाव के भय से भाग रहा था, तब एक रात वो रेगिस्तान में चट्टान पर सिर रखकर सो गया। उसने एक स्वप्न देखा कि आकाश खुल गया है और वहां एक सीढ़ी से स्वर्ग दूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। जब वो सुबह जागा तब उसने कहा, निश्चय ही परमेश्वर यहां है जो मैंने नहीं जाना। बेतेल एक सुनसान चट्टानी क्षेत्र था जहां प्राकृतिक सौंदर्य नहीं था कि परमेश्वर की उपस्थिति का बोध हो, परंतु उसे वहां परमेश्वर की उपस्थिति का बोध हुआ और उसने उस स्थान को बेतेल कहा, अर्थात परमेश्वर का घर। होशे अध्याय 12 पद 5 और 6। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। लोगों के लिए ये एक उपदेश है। होशे अध्याय 12 पद 7। वो व्यापारी है, वो एप्रेम को व्यापारी कहता है। होशे अध्याय 12 पद 7 से लेकर 9 तक। और उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करना ही उसको भाता है। एप्रेम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। मैं यहोवा परमेश्वर ने प्रति उत्तर में कहा। होशे अध्याय 12 पद 9 में आगे लिखा है, मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूं, मैं फिर तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। तंबुओं का पर्व वो है जंगल में भ्रमण के काल के समय, जहां पर वे झोपड़ियों में रहकर परमेश्वर की आशीषों को स्मरण करते हैं। होशे अध्याय 12 पद 10। मैंने भविष्यद् वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा, और भविष्यद् वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूं। परमेश्वर कहता है कि उसने उन्हें दर्शन और भविष्यद् वक्ताओं के द्वारा बातें की और दृष्टांत कहे। भविष्यद् वक्ता प्रतीकात्मक जीवन व्यतीत करने के द्वारा परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचाते थे। होशे अध्याय 12 पद 11 और 12। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? वे पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी वेदियां उन ढेरों के समान हैं जो खेत की रेघेरियों के पास हो। याकूब आराम के मैदान में भाग गया था। ये उस समय की बात है जब याकूब अपने भाई से डर कर भाग गया था। होशे अध्याय 12 पद 12 से लेकर 14 तक। वहां इसराइल या याकूब ने एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वो चरवाही करता था। एक भविष्यद् वक्ता के द्वारा यहोवा इसराइल को मूसा के द्वारा मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद् वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एप्रेम ने अत्यंत रिस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है वो उसी को लौटाया जाएगा।